نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 98 آیت نمبر 1 سے 19 سورة الانفال. لیسن نمبر 98 آیت نمبر 1 ٹو 19 سورة الانفال. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نئی سورت کو شروع کریں گے. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے آج نہ صرف یہ کہ سبق کا خلاصہ بلکہ سورت کا خلاصہ بلکہ ابھی تک جتنا قرآن پڑھا ہے جتنی سورتیں پڑھی ان سب کا خلاصہ کریں گے. آج آپ کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ شروع کا انٹرو جو ہے یہ زیادہ لمبا ہوگا آیتوں کے ترجمے کے ساتھ چلنے سے, کیونکہ وہ بات جو کسی آیتوں کو سامنے رکھ کے ہم پڑھیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ کی ایک بیس بن چکی ہو تو آیتوں کو سمجھنا آسان لگتا ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہر ممکن کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو نوٹ کریں. گھبرائیں نہیں, میں اس میں آپ کو کوئی فگرز فیکٹس میں نہیں ڈالوں گی, لیکن میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پچھلی امتوں کی جو اسٹریٹجیز تھی اس کا فرق بتاؤں گی. تھوڑی سی ایڈوانس بات ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لے پائیں گے. تو اگر آپ نے لکھا نہ اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھے رہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ فیل کریں گے کہ یہ بہت لمبا ہو گیا, ہم آیتیں کب شروع کریں گے. تو تھوڑی سی بات سورت کے بارے میں, سورت الانفال آپ کے میرے سامنے ہے. متنی سورت ہے, 10 رکوع ہیں اور 72 یعنی 72 آیات ہیں. سورت الانفال اگر آپ دیکھیں تو یہ متنی سورتوں میں سے ہمارے پاس وہ سورت ہے کہ جس کو ایک ہی سٹریچ میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یعنی اس کی ایک خوبی کیا ہے کہ یہ خطبے کی صورت میں نازل ہوئی تھی. کسی بھی صورت کا شان نزول اور کس موقع پہ وہ نازل ہوئی تھی اس کو جانے بغیر قرآن کی تفسیر کرنا میرے خیال میں ایک جرم ہے. یقین کریں, نہ آگے کا پتہ ہو نہ پیچھے کا پتہ ہو اور ہم ڈائریکٹ اگر قرآن کو پڑھ کے اور شروع کر دیں تو نہ سننے والے اس جگہ پہنچ سکیں گے نہ سنانے والے. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ سورت الانفال یہاں کیوں آئی. پہلے تو آپ کو ایک سمپل بات جو آپ سب کو بہت ایزی سمجھ آ جائے گی, ہم سب نے ابھی سورت الاعراف میں پچھلی قوموں پہ عذاب کی باتیں پڑھی. سب کو یاد ہے, سب نے سمجھ لی کہ پچھلی قوموں پہ کس طرح اللہ کو جھٹلانے کے نتیجے میں عذاب آیا. اور طریقہ کار بھی ہم نے دیکھ لیا پچھلے انبیاء کرام کی دعوت کا کہ ایک خاص عرصے تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے, تقوی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے رہتے, اور اس کے بعد جب قوم نہ مانتی تو جو چند لوگ ایمان لاتے تھے ان کو نبی کے ساتھ ہجرت کا حکم مل جاتا تھا, اور باقی پیچھے جو بچتے تھے جس کو آپ کہہ لیجئے کہ بھوسی جو بچ جاتی تھی اس کو کبھی زلزلے کے ساتھ کبھی طوفانوں میں ڈال کے کسی بھی طرح سے کر کرا کے جلا دیا جاتا تھا. یہ بات سب کو کلیئر ہے نا؟ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب آج سے آگے سورت انفال اور سورت توبہ یہ دو سورتیں ہیں جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہوا اس کا بیان ہے. میں پھر بات کو دہراتی ہوں کہ پچھلی سورتوں میں قوموں کی ہلاکت کا طریقہ بتایا گیا تھا, کیونکہ پہلے دور میں نبیوں پر ایمان لانے والے نمبر ایک بہت تھوڑے تھے, نمبر دو آپ کو جھٹلانے والے زیادہ تھے, نمبر تین اس نبی کے بعد اگلا نبی آنا تھا. کیا میں نے بولا؟ ماننے والے تھوڑے تھے, بہت ہی تھوڑے, آٹے میں نمک کے برابر, جن کو وہاں سے نکالنا بہت آسان تھا. نمبر دو یہ کہ ماننے والی پوری پوری قومیں تھیں, جن کو تباہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں, ساری کی ساری کو اکٹھا ختم کر دو. جیسے ہم آگ لگائیں تو کبھی کبھی زیادہ ہی چیزیں خراب, ہم کہتے جلا دو سب کو, پھر دیکھیں گے جو ہوگا, تھوڑی بہت چیزیں اس کو پھر ڈھونڈ لیں گے, رائٹ. اور تیسری بات یہ کہ اس نبی کے بعد ایک نیا نبی آنا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نبیوں کو خیر سے نکال دیتے تھے اس جگہ سے اور ان کی جگہ پہ اگلے نبی کو لے آتے تھے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک, اب یہاں لکھیے 1 2 3 کر کے پوائنٹس لکھیں گے کہ یہ ڈفرینس کیوں ہے. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کثیر تھے, کثیر لوگ آپ کی زندگی میں ایمان لائے, بلکہ جب آپ دنیا سے گئے اور حجۃ الوداع کا موقع تھا تو اس وقت آپ کے ساتھ ساتھ جو حج کرنے والے تھے وہ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں میں سے اکثریت کے اندر خیر تھی اور بالآخر وہ مسلمان ہو گئے تھے. यानी आप ये कह लीजिए कि उनकी नस्लें ईमान ले आई थी। सिर्फ इंटरेस्ट के लिए सुन लें कि जैसे अबू जहल मारा गया लेकिन उसका बेटा इकरमा मुसलमान हो गया, जिस तरह अबू तालिब ईमान ना ला सके लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हो उनके बेटे थे वो बहुत ही पक्के मुसलमान बने, तो गोया के उनकी नस्लों में खैर थी इस वजह से। तीसरी वजह यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अगर अल्लाह के नबी की मौजूदगी में इतने बड़े गिरोह को ख़त्म कर दिया जाता तो फिर उसके बाद तो कोई नबी आना नहीं था, तो ख़तरा था इस बात का कि इंसानियत में से अक्सर जो थे वो हिदायत से महरूम रह जाते। तो ये सारे वो सिनेरियोस थे कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुटलाने वालों के साथ मुख्तलिफ मामला किया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हमने देख लिया कि सबको इकट्ठा नहीं मारा। अब अगला सवाल लिखिए, क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया? तो इसका जवाब लिखिए कि पिछले नबियों की उम्मतों को यक बारगी यानी एट वंस किसी अजाब में ख़त्म कर दिया गया। राइट, ऐसे ही हुआ ना, सारे नबियों की कहानियाँ आप माशाल्लाह आपके दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुटलाने वालों को स्टेप बाय स्टेप मारा गया। इनको दो स्टेप्स यानी आप लिख लीजिए अभी अपने पास कि दो बड़ी चीज़ों के बीच में, यानी बस आप सिंपल ये लिख लीजिए कि गज़वाए बदर से लेकर जो सन 1 हिजरी में हुई, सॉरी सन 2 हिजरी में हुई और सन 9 हिजरी यानी सन 2 से लेके 9 हिजरी 2 to 9 कितने साल हो गए, तकरीबन 7 सालों में बतदरीज ग्रेजुअली हलाक किया गया। ठीक है, पहला फ़र्क। अगला फ़र्क क्या नोट कर लीजिए कि पहले लोगों को अल्लाह ताला ने किसी आसमानी आफत से मारा, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कोई भी जो हमने पढ़ लिया तूफ़ान और दिस एंड दैट। इसके बरअक्स अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नबी और उनके साथियों के ज़रिए क़िताल के ज़रिए ख़त्म किया। बात फ़र्क है कि सही है? देखिए, कोई आसमान से अजाब आए तो कोई मर जाए और किसी को अल्लाह कह दे जाओ तुम इसको मारो, दोनों में हुक्म किसका है? अल्लाह का है ना। तो यहाँ से अब आपका जहन इस तरफ भी आ गया होगा इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह ताला के नबी पर ये जो इल्ज़ाम है कि आपने जंगें की, आप टेररिस्ट थे, आप लोगों के बेटे मरवाते थे, तो ये इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम है। अल्लाह के नबी ने अगर कभी तीर उठाया या तलवार उठाई तो ये अल्लाह के हुक्म से उठाई। बल्कि एक और जुमला बोल देती हूँ कि अल्लाह के नबी की सारी जंगें अल्लाह के अजाब का दूसरा नाम था। बात वाज़े? अब आप किसी भी बड़े से बड़े काफिर से पूछें, इमेजिनेशन में लाएं, कोई बहुत बड़ा डाकू है, रिबेलियस है, कोई उसने खाना जंगी की या दहशतगर्दी की, उसको कहा जाए कि तुम इधर खड़े और एकदम आसमान से बिजली आए और तुम उससे जल के भस्म हो जाओ, नंबर एक। और दूसरी चॉइस ये है कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगे और हो सकता है मुकाबले में तुम जीत जाओ, हो सकता है वो जीत जाए, तुम क्या पसंद करोगे? आप एक लम्हे के लिए उसके जहन को सोच के बताइए कि वो क्या चूज करेगा? मुकाबला कोई नहीं चाहेगा कि मैं एक झटके में मारा जाए, वो कहेगा हो सकता है पुलिस मुकाबले में मैं बच जाऊं। तो ये बताइए कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ जो आपके दुश्मनों के साथ मामला हुआ, फिर वो ज़्यादा लीनियट था? पिछली कौमों को तो मोहलत नहीं मिली। इस दफ़ा मैंने आपको उनके अजाब की इतनी कहानियाँ नहीं सुनाई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। आगे आगे जहाँ आता जाएगा आपको एक एक कौम का हाल सुनाते जाएंगे कि आप देखेंगे उनको कोई ठिकाना नहीं मिला। हत्ता कि एक कौम पर अजाब आया, पूरी कौम मारी गई, सिर्फ एक शख्स उस वक़्त शहर से बाहर था और कहाँ था? हरम की हद में था, अबू रगाल उसका नाम था। अब वो हरम की हद में था, वहाँ अजाब नहीं आ सकता था। जो ही वो हरम की हद से दूर गया, आसमान से उसके ऊपर आफत आई, वो मर गया। उसकी कब्र अल्लाह के नबी के दौर में डिस्कवर हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ अल्लाह ही के हुक्म से हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप देखिए कि अगली बात जो इस सूरत के नाते से है, हमने पीछे सूरत अल अनाम और सूरत अल अराफ पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ी सूरत अल अनाम और सूरत अल अराफ, ये दोनों क्या थी? पेयर थी। ठीक है, अब आप बोलें तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। सूरत अल अनाम का थीम क्या था? तज़कीर बिल आला इल्ला, अल्लाह की नेमतों के साथ लोगों को रिमाइंडर दिया। आपने बहुत सारी नेमतों का पढ़ा। सूरत अल आराफ का थीम क्या था? उसका ऑपोजिट तज़कीर बी अय्याम इल्ला। यानी आप कह सकते हैं कि सूरत अल आराफ में डरावे थे और सूरत अल अनाम में रग़बतें थी, और ये दोनों मक्की सूरतें थी। बड़ा दिलचस्प नुक्ता है यहाँ। अल्लाह आपका जहन खोल ले, रब इशराहली भी पढ़ें, और मैं आप सबको दुआ दूंगी कि अल्लाह आपके जहनों को खोल दे। अब वो दो मक्की सूरतें पढ़ी, सूरत अनाम और सूरत अनफाल। इन दो मक्की सूरतों में कुरैश मक्का, जिनको आप बनी इस्माइल कह लें, उनको फुल तरीके से अल्लाह ताला ने वॉर्न कर दिया। पहले प्यार से समझाया, जैसे माँ पहले प्यार से समझाती है, पिचकारती है, चलो मेरा बच्चा चल ना, चलो उठो, चलो स्कूल चलो, चलो मुंह धो लो, कहती है ना। और जब बच्चा ज़रा ज़्यादा हुआ करती है तो बेगुस्सा भी करती है। दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से मुशरिकीने मक्का को वॉर्न भी कर दिया, प्यार और मोहब्बत से भी समझा दिया। और मक्की दौर था, जिसको मानना था वो मान चुके। आज मदनी दौर शुरू हो रहा है। वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने हर मुमकिन तरीके से वॉर्न कर दिया था, आप बिल्कुल अपने बच्चे पे अपने आप को लें, प्यार भी नहीं माना, गुस्सा भी नहीं माना, तो अब तो फिर गजब ही आएगा। लिहाजा सूरत अल अनफाल और सूरत तौबा ये भी जोड़ा है। वो मक्की सूरतों का जोड़ा है, ये मदनी सूरतों का जोड़ा है। अगर आप इन चारों को एक ग्रुप बना दें, तो अनाम और आराफ में मुशरिकीन मक्का पर इतमाम हुज्जत हुआ, मैसेज कन्वे कर दिया, जो करना था कर दिया। देखिए, किसी को भी आप किसी चीज़ की भी दावत दें, इवन आप किसी को अपने घर में खाने की दावत देते हैं ना, तो एक ख़ास हद तक ही कहते हैं। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि आई थिंक सो कि इसको मेरा खाना नहीं पसंद, फिर चुप कर जाते हैं ना। बस यही होता है, अल्लाह की यही सुन्नत है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से बात पहुंचा दी, और अब जो दो मदनी सूरतें सूरत अनफाल और तौबा हम पढ़ेंगे, अब इस हुज्जत के पूरा होने के बाद अजाब का तज़किरा है, तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत अहम सूरतें हैं। थोड़ा सा इसके ज़माने नज़ूल को देखते हैं। सूरत अनफाल गज़वे बदर के फ़ौरन बाद और सूरत आले इमरान के अक्सर हिस्सों के नाजिल होने से पहले नाजिल हुई। यहाँ रुक के थोड़ा सा मैं आपकी मदद कर दूँ। हम पहले सूरत आले इमरान में गज़वे बदर का किस्सा पढ़ चुके हैं ना, आपको याद होगा ना। अब सूरत अनफाल यहाँ आ रही है, लेकिन नज़ूल में ये पहले थी, ये बताना चाह रही हूँ। तरतीब नज़ूल, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता मेरे जहन में आ गया, अल्लाह ने डाल दिया, सुन लीजिए। देखिए कि जो हिस्सा कुरान का बाद में नाजिल हुआ था ना, अक्सर वो तरतीब में हम पहले पढ़ लेते हैं, बाद वाला पहले पढ़ते हैं। तो ये उस चीज़ का जवाब है कि हम कहते हैं कि हम कुरान को तरतीब से नहीं पढ़ सके तो अब हम बीच में नहीं आएंगे। मिसाल है, जैसे अब देखिए, इधर मैं आप सबको ही देती हूँ, जो इधर मिसाल है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पिछले 2 वीक में 8-10 चेहरे मुझे नए दिखे हैं ना, माशाल्लाह। जैसे जरीना आपा हैं, नसरीन बाजी हैं, आपका नाम मुझे नहीं आता, ये दो बच्चियाँ हैं, दो ये इधर बैठी हैं, अलग नज़र से बचाए। अब 8-10 लोगों ने 2 वीक से शुरू किया ना, मेरा ख्याल है आप जी इस पार्टी के बाद आए हैं, बबरकत है ये पार्टी। अब आप बताइए कि आपको एक दिन भी यहाँ आके ये फील हुआ कि ये स्टोरी के पिछली कहानी क्या थी? जैसे ड्रामा बीच में शुरू करें तो जहन में आता है, नहीं हुआ। कुरान की तरतीब नज़ूल और ये तरतीब बड़ी फ़र्क है। तो इसका मतलब ये कि इसको जहाँ से भी आप ज्वाइन करेंगे ना, ये बिल्कुल वहाँ ही रहेगा। इवन एक कितना दिलचस्प वाक़या हुआ था, हमारा RKP कोर्स पूरा हुआ, अब से शायद 1.5-2 साल पहले की बात है, कोई भी एक कोर्स था, तो मुझे एक तरफ इनविटेशन आया उस कोर्स का कि आप हमारी आखिरी दिन की तकरीब में आएँ और ये आपका स्पेशल सेशन है, और उसके फ़ौरन बाद मुझे एक ईमेल मिली। जब भी कोई ऑनलाइन कोर्सेज में नया रजिस्ट्रेशन आता है ना, तो हमें चंद लोगों को ईमेल्स आती हैं उसके जवाब में, उसकी जो भी है। तो मुझे एक ईमेल मिली, किसी ने हमारी वेबसाइट से वो कोर्स पढ़ा, अब उसको नहीं पता कि इस वक्त वो कोर्स किस स्टेज पे है, तो उन्होंने उसी कोर्स का फॉर्म फिल किया। मुझे इतना अच्छा लगे, ये अब अल्लाह की प्लानिंग थी ना। फिर हमने उनको बहुत अच्छी तरह बताया, खुशी भी हुई कि चले अब आपका हम अगले कोर्स में डाल देंगे, इस कोर्स की तो 2-3 दिन बाद क्लोजिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप जो सूरत पढ़ रहे हैं, ये नाजिल हुई थी पहले, लेकिन आपकी तरतीब में फ़र्क आ गई, तो ये अल्लाह का कलाम है। हमारे कलाम की कोई बात बीच में छोड़ देना तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन फ़बियही हदीस बादहु युमिनून, तो ये कुरान का हुसन है कि नाजिल ये गज़वे बदर के फ़ौरन बाद हुई थी और सूरत आले इमरान के अक्सर हिस्से से पहले। इसलिए आप जब इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको सूरत आले इमरान की कुछ आयतें ज़रूर याद आएंगी कि उसमें किस तरह से मामला होता था। फिर इसके बाद आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो आपको जितना सताया गया ये सब आप सब पढ़ चुके हैं। उस दौरान ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद अब अमली तौर पर मुसलमानों को एक जगह मिल चुकी थी मदीना की सूरत में, हिजरत करके आए, और उन हालात में अब अल्लाह ताला सहाबा कराम से अमली काम लेने वाला था। आप ये कह लीजिए कि नबी सल्लम की दावत की इब्तदाई 10 से 12 साल जब आप मक्का में थे, बिल्कुल आप अपनी हसीयत मनवा चुके थे, मेहनती, बुलंद सीरत, आली ज़र्व थे, आप इंतहाई अक्लमंद थे, दिन रात अपने मिशन में अपने आप को खपाए हुए थे। सहाबा ये देख रहे थे, जैसे आपके बच्चे आपको देख रहे हैं ना आज माशाल्लाह मेहनतें करता हुआ, इस तरह सहाबा ने अल्लाह के नबी को देख लिया था। दूसरी तरफ खतरे बहुत थे, मुश्किलात बहुत सारी थी, हर तरफ से परेशानियाँ थी, मुआशरा पूरा कहीं और जा रहा था। जो बंदा नबी सल्लम की दावत पर लब्बई कहते हुए आपका साथ देता, मुआशरे में जिसको आप कहते हैं आउटकास्ट हो जाता। तुम्हें क्या होगा, तुम किधर चल पड़े, तुम क्या होगा, तुम्हें क्या होगा, लोग किधर जा रहे हैं, तुम किधर जा रहे हो। अब ये सारी चीज़ें, नंबर एक नबी सल्लम की कमिटमेंट अपने मिशन के साथ, दूसरी आपका इखलाक, कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते थे, तीसरी बाहर से पड़ने वाली मुश्किलात की चक्की, और चौथी वो उतरती हुई वही जो दिलों को पिघलाती थी। हर दिन कुरान में वो आयतें आ रही थी कि जो सहाबा वो सुन रहे होते थे तो उनके दिल में और अल्लाह के रस्तों में निकलने का शौक आता है। अब आप कह सकते हैं कि इन 12 सालों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक इतनी खूबसूरत टीम तैयार हो चुकी थी कि जिसको अब अमली तौर पे कुछ करना था। आप ऐसे समझें कि एक बंदा 10 साल से फौज की ट्रेनिंग ले रहा है, तो अब उसके हाथों में ख़ारिश हो रही है ना कि मैं किस दिन जाके मैदान जंग में अपने जौहर दिखाऊं, या 10 साल से एक बच्चा स्टूडेंट बन के डॉक्टर बनना चाह रहा है, तब उसकी ख्वाहिश क्या है कि मैं किसी तरह अमली मैदान में जाऊं और सर्जन बनूं। सहाबा कराम की अब बिल्कुल यही हालत थी, अल्लाह के नबी के ज़रिए से बेहतरीन तौर पे उनकी तरबियत और तज़किया हो चुका था, लिहाजा अब वो वक्त आ गया, यानी आप ये लिख लीजिए कि अब वो वक्त आ गया था कि अमली तौर पर इस्लाम को नाफिज किया जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने यही बात की। एक साल हुआ था अभी मक्का से हिजरत करके मदीना आए हुए, अल्लाह ताला ने सब्र और तहम्मुल के साथ नबी और उनके साथियों को रहने का मौका दिया। बीच में बार बार ख्वाहिश भी हुई कि हम इनको जवाब दें, लेकिन कुफ व अइदियकुम पे खामोश करवा दिया गया। लिहाजा आप कह सकते हैं कि मुशरिकीन ने मक्का पर अल्लाह के अजाब का पहला कोड़ा सन 2 हिजरी में गज़वे बदर के मौके पर बरसा। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड फतह थी, सरासर एक मौजज़ा था। कुरैश के 70 लोग मारे गए जो लीडर थे, इन लीड्स टॉप क्लास, 70 लोग कैदी बनाए गए और बहुत सारे ज़ख्मी हुए। ये वो लोग थे जो अपनी बहादुरी में मारूफ भी थे और अपने दौर के बेहतरीन असलहा होल्डर थे, और मज़े की बात है कि मुसलमानों से उनकी तादाद 3 गुना थी। 3 times बिगर आर्मी वॉज डिफीटेड बाय किन के हाथों? मुसलमान कितने थे? 313। लिखिए ज़रा, 313 में से आपको मज़े की बात बताऊं, सिर्फ 8 लोग, अगर आप मेरी उंगलियों को देखें ना, 313 के मुकाबले में सिर्फ 8 लोगों के हाथों में तलवारें थी। ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्ला। और आप आगे जाके जब इसकी तफसीलात पढ़ाऊंगी तो हैरान होंगे, उधर 1000 का बेस्ट किस्म का असलहा रखने वाला गिरोह है, और इधर इन गरीबों के पास 2 घोड़े और कुछ ऊंटते, या इसका ऑपोजिट था, आपको फिगर्स लिखा देंगे आगे जाके। सिर्फ सुनिए कि अल्लाह ने किन को किन के हाथों फतह दी, और ऐसी शिकस्त हुई कि आज नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस लिखते हैं, मैंने खुद वो बुक्स ऑन नेट पे जाके उनको देखा, कि वो कहते हैं कि बदर की विक्ट्री आज तक ना समझ आने वाला राज है। इंसानी अकल इसको मान ही नहीं सकती कि कभी ऐसे मौके पे इतने छोटे ग्रुप को फतह हो। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ से अजाब की पहली किस्त शुरू हुई। अब आगे जब जाके इंशाल्लाह सूरह तौबा शुरू करेंगे तो फिर बोलूंगी, लेकिन आज बोलना लाजमी है कि इस अजाब की दूसरी कड़ी आखिरी हमला जो था वो सन 9 हिजरी में हुआ। सूरह तौबा की पहली आयतें हैं, बरातु मिन अल्लाही व रसूलिही में आगे पढ़ेंगे। इतने सब्र के बाद 13 साल मक्का के, 9 साल मदीना के, आखिर 21 साल के सब्र के बाद अल्लाह ने नबी को कह दिया आज से फिर मुशरिकों को सिर्फ 4 महीने की मोहलत दो और उसके बाद इनको मक्का से निकाल दो। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं इस सारी चीज़ को देखेंगे। इस वक्त मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, हाय वो कैसे था, कभी आज भी ऐसे ही हो जाए, कभी आज भी इस्लाम दुनिया में आ जाए। कहते हैं ना, अब ये मौजू पूरा हो गया, अब आप रिलैक्स हो जाए, ठीक है। फिक्र आपके जहन में आ गया आज क्या पढ़ना है और आगे आने वाले दिनों में क्या पढ़ना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कभी इस तरह की ट्रिमेंडस किस्म की विक्ट्री होती है ना, तो वो सिर्फ चांस नहीं होता। अगर आप ये कह ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सब हादसाती तौर पे हुआ, कि अल्लाह ने अपने नबी को इतने जीनियस किस्म के साथी दे दिए कि जिन्होंने बस अल्लाह के नबी के साथ मिल मिला के ये सारे काम कर करा लिए और सारा हो गया, तो ये तो फिर ज्यादती है। ये ऐसे ही जैसे मैं आपको आपके ऊपर ही रख के मिसाल देती हूँ कि जैसे आप अपनी दोस्त के बच्चे देखती हैं, डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है, 5 वक्त के नमाजी भी हैं, तो कभी कभी माओं के दिलों में कंपैरिजन आने लगता है ना कि अच्छा इसके तो 5 बच्चे और पांचों इतने अच्छे दीन में भी दुनिया में, तो देखो मेरे नखट्टू अल्लाह ने मुझे क्या दिया। ऐसा आ जाता है ना इंसान होने के नाते। लेकिन कभी आप अपनी उस दोस्त के साथ बैठे और उसे के सुनाओ बहन कि तुमने ये सब कुछ कब कैसे किया, तो फिर वो आपको एक लंबी कहानी सुनाएगी ना। मेहनत होती है ना माओ की। आपके जिनके बच्चे इस वक्त माशाल्लाह दीन और दुनिया की बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, मेहनत है ना। तो आप यहाँ वो स्ट्रेटेजी नोट कीजिए, क्योंकि आप जो बात बताने लगी हूँ ये मेरे और आपके आज के हालात के ऊपर है। कि आज भी तो हम यही चाहते हैं ना कि गज़वे बदर वाले हालात पैदा हों, आज भी मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की मदद आए। तो 5 मरहले होते हैं, जब भी अल्लाह किसी दीन वाले को, जिसमें ऑफ कोर्स यहाँ हमारे पास रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह सुभान ताला जब भी किसी दीन वाले को मदद करते हैं, उसकी फतह करते हैं, तो पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी स्ट्रेटेजीज ज़रूर होती हैं और होनी चाहिए कि जिनके ज़रिए से आपको अल्लाह ने गलबा दिया। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर वाले दिन यानी गज़वाए बदर के मौके पर जो गलबा हुआ, उसमें उससे पहले के कुछ काम थे। लिखिएगा, सबसे पहला मरहला होता है दावत का, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना। इसका आगाज कब हुआ? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। 40 साल की उम्र मुबारक में नबी सल्लम के पास जब वही आई, आप गारे हिरा से उतरे, ज़म्मेलूनी ज़म्मेलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, अपनी बीवी हजरत खतीजा को कहा। और उसके बाद फिर दावत शुरू हो गई। फिर ढके छुपे रातों को दिन को अल्लाह के नबी की एक ही तड़प थी, दावत दावत के लोगों दीन की बात मान लो, लोगों दीन की बात मान लो। 13 साल की मक्की ज़िंदगी जब आप सीरत की रोशनी में पढ़ेंगे, सुना करें तजलियात नबूवत में, मैंने बहुत ब्रीफ बताया, 3 मरहले हैं फिर मक्की दौर के। 1-on-1 बेस पे पहले 3 साल, और उसमें किसी ने नोटिस भी नहीं लिया कि ये छोटा सा एक ग्रुप है, 4 लोगों के दिमाग बदल गए। लेकिन जब लोग बढ़ते जा रहे थे तो लोगों को फिक्र हुआ, फिर दूसरा मरहला ओपन तबलीग का शुरू हुआ, और तीसरा दौर जुल्म सितम और ज्यादतियों का था, ठीक है। इस मरहले के बाद अगला जो मरहला होता है ना किसी भी जगह गलबा दीन का, वो होता है तंजीम। तंजीम क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्गेनाइजेशन की, क्लासिफाई किया, सहाबा को परखा कौन क्या कर सकता है, किस तरह कर सकता है, किस तरह के मामलात हैं, और ये सब कुछ आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। अभी इसी में देखिएगा कि जंगों में ही आपकी तरतीब कितनी दिखती है। तीसरा मरहला होता है तरबियत। ये है आज के हमारे सबक की शुरू की आयतों का मजमून, तरबियत की साथियों की। क्योंकि तरबियत किए बगैर किसी को मैदान में ले जाना खुद को हलाक करना है। मसलन आप इसको अपने ड्राइविंग करने पे सोचिए, आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसका रिटर्न पढ़ती हैं ना, रोड्स के नाम, साइंस को किताबें पढ़ते हैं, फिर तंजीम, फिर फिर आप उस सारे सिस्टम को समझते हैं, गाड़ी किधर रोकनी है, किधर मोड़नी है, साइंस के। फिर तरबियत में क्या होता है कि आपको स्टेयरिंग दे दिया जाता है, ठीक है। तो तरबियत की आगे हम पढ़ेंगे सहाबा के मिजाज को देखते हुए, इंशाल्लाह आयतों में आएगी। अगर सहाबा की ये 13 साल की तरबियत ना की गई होती तो आपको होता है कि जंगों के मौके पे दुश्मनों की बजाय खुद को मार देते। आज हम मुसलमानों के लीडर्स ये भूल गए, आज हम जिहाद पे पहुंच जाते हैं लेकिन तरबियत नहीं, वो गिरोह नहीं है। तो बहरहाल तरबियत है। चौथा नुकता होता है सब्र महज, बी पेशेंट, सब्र करो। ये 4 मरहले मक्की दौर में तय हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत निसा में आप पढ़ चुके हैं आयत 77 में, कुफ्फ अयदिया को जियाले बहादुर लोग आके कहते थे अल्लाह के नबी इजाजत दें जरा जंग की, तो कहा जाता था स्टॉप, लेट कूल डाउन, जरा सब्र करो, यानी कुफ वायदियाकुम रोको। सहाबा को इस तरह अतीउल्लाह और अतीउर रसूल में बांध दिया गया था कि उनको अपने नफ्स की बात मानने से ज्यादा नबी सल्लम की बात मानना अजीज था। अल्लाह के नबी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना सहाबा की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब ये 4 मरहले हो चुके थे, इसके बाद अब मौका आता है 5वें मरहले का। नबी सल्लम के पास जान निसारों की एक मुख्तसर सी टीम थी। मजे की बात देखिएगा, बहुत छोटी टीम थी अल्लाह के नबी की मक्का से निकलते हुए, लेकिन मजबूत टीम थी, हर वक्त हर घड़ी तैयार। पाकिस्तानी फौज का एक बड़ा खूबसूरत स्लोगन होता था ना एक वक्त में, हर घड़ी तैयार, कामरान कामरान, बड़ी प्यारी फीलिंग आती थी ना। तो सहाबा का हाल क्या था कि वो इन 13 सालों में तरबियत लेकर हर सख्ती झेल चुके थे, हर कुर्बानी दे चुके थे, और मजे की बात है रही सही चीजों को हिजरत के नाम पे छोड़ आए थे, चलो रखो तुम। इस वक्त वो इखलास की मुंह बोलती तस्वीर थे, तरबियत याफ्ता भी थे, मुनज्जम भी थे और मजबूत भी थे। अब अल्लाह के नबी के हाथ मजबूत थे, आप अकेले नहीं थे। लिहाजा जब मदीना आए, हिजरत हुई, अब ऐसे वक्त में 5वें मरहले की जरूरत थी जिसको किताल कहते हैं। गलबा इस्लाम के रास्ते में जब ये तरतीब चलती जाती है तो मुसलमानों को पता होती है। सहाबा कराम जब मदीना में आए, अब ज़रूरत थी कि इस वक्त मुसलमानों को परखा जाए। और याद रखिए कि आप जो हिजरत करके आए थे तो आप मक्का से भागे नहीं थे, फरार नहीं था, बल्कि आपको एक बेस चाहिए था। दुश्मनों के मुल्क में रह के तो बेस नहीं बनता ना, तो लिहाजा मक्का से निकाल कर मदीना में आए, ऐसे कह लें कि आपको बस एक अल्टरनेट दे दिया गया, टीम मौजूद थी, एक पीसफुल जगह मिली, और उसके बाद बस फिर अल्लाह के नबी के साथ सहाबा ने जो किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये आज अर में आप पढ़ने वाले हैं। तो कोई जज्बाती फैसले नहीं थे, कुछ नहीं थे, सहाबा कराम ने हर मौके पर अल्लाह के नबी का साथ दिया। बल्कि एक मौके पर तो आपने कहा कि अल्लाह के नबी आप हमें बरकुल गिमाद दूर की जगह, जैसे आज हमारे यहाँ कहते हैं ना कोकाफ, सुनी हुई है का कोकाफ गया, दूर की बात है ना, आप हमें बरकुल गिमाद तक ले जाएंगे तो हम जाने को तैयार हैं। और इसकी मिसाल उन्होंने गज़वे तबुक में जाकर दे दी, हकीकी बात है। तो अब हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों की कहानियों को कुरान की आयतों के साथ पढ़ेंगे और अपने लिए ये सब कुछ लेंगे कि आज अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में इस्लाम फैले, कितने महाजों पे जंग लगी हुई है, दूर की बात ना करें, एक सिर्फ बड़ा मशहूर पैटी इशू कश्मीर का है ना, कितने साल हो गए 47 से लेके आज तक, कोई बता सकता है कितने साल हुए हैं? 68 ईयर्स हो गए। कोई फैसला हुआ आज तक? नबी सल्लम के दौर में बड़ी से बड़ी जंग ओनली 1 महीना रही, या आर या बार। वजह क्या है कि वो सिर्फ हक के लिए लड़ते थे, यहाँ हक नहीं है। आज बहुत सारी जिहादी कॉल्स भी हक नहीं होती, कहीं वही बात है कि माले गनीमत और किश्वर कुशाई। याद रखिए अल्लामा इकबाल का वो शेर आपको इन दो सूरतों के दौरान कई बार सुनने को मिलेगा कि शहादत है मतलूब और मकसूद है मोमिन, मोमिन का मुंतहा, मोमिन की एक्सपेक्टेशन ओनली शहादत है। शहादत है मतलूब, मतलूब समझते हैं जिसको तलब किया जाए, डिजायर्ड थिंग वांटेड थिंग, और मकसूद मकसद गोल फोकस्ड। शहादत है मतलूब मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत नेवर, और न किश्वर कुशाई, مال غنیمت تو آج بھی سن لیتے ہیں. کشور کشائی کیا کہ اپنی زمینوں کو بڑا کرنا, ملکوں کو بڑا کریں, یہ بھی میرا ملک یہاں تک تو ہے, اب اگلا بھی میرا ہو جائے, پانی کے تیل کے کنویں میرے ہو جائیں, تو ایسی چیزوں میں اللہ کی مدد نہیں آتی. بس آپ اس کو آج یہ بات سن کر آگے چلیے, اور ہم سب انشاءاللہ تعالی اس پہ دعا کریں گے کہ آج میں اور آپ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں نا قرآن سیکھنے, نہ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں نہ تیر ہیں, میں اور آپ اس وقت اس غلبہ اسلام کی کوششوں میں کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ علمی جہاد ہے. جو صحابہ کے ہاتھوں میں تیر آنے سے کام ہوا تھا, آج امت مسلمہ, ابھی ہم دعوت کے پہلے آغاز میں, آج بھی یہ پانچ ہی مرحلے ہیں. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندھیرے دور کریں؟ چاہتے ہیں نا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہمارے ایک پاکستانی اسکولوں میں, اکثر اسکولوں کے شروع میں اسمبلی کی دعا تھی, اور یقین کریں کہ مجھے پہلی دفعہ یہ تب سمجھ آئی جب میں نے قرآن پڑھا. میں کہتی تھی کبھی کوئی صبح اٹھ کے لب پہ آتی کی بجائے اس کا ایک ایک مطلب بھی تو بتا دے, لیکن جب قرآن پڑھے دل میں تڑپ آئی تو پھر دعا تھی کہ اللہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو علم کی شمع سے مجھ کو محبت, آج ہے علم کی شمع سے محبت. تو میں اور آپ سے مراد ہے کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے آج دنیا میں, آج ہم پہلے مرحلے پہ دعوت, تنظیم, تربیت اور صبر, یہ چار کام آپ ابھی کریں. اس کورس کے دوران آپ نے بس یہ چار کام کرنے ہیں. اگر آپ بھی اس غزوے سے اور جنگوں سے اپنے لیے کچھ لینا چاہتے ہیں, اس پیغام کو سن کے اپنے دلوں کو کھولنا, اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ جو ہمیں کرنا ہے کر دو. جیسے مجھے کسی کی بات یاد آ گئی, کہتی ہیں استاذہ میں آ گئی ہوں, اب میرا جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کا جار ڈالنا ہے, سنی ہوئی ہے نا بات, مجھے جہاں بھی لینا ہے لے جائیں, بس مجھے اس راستے میں کہیں استعمال کریں. تو مجھے ان کا وہ جملہ سن کے نا, تو وہ صحابیہ کی بات یاد آ گئی تھی کہ جو اس مشن کی سچائی کو سمجھتا ہے نا, پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیا ملا ہے, وہ یہ کہتا ہے میں نے کیا دیا. کہ ایک عورت اپنی گود کا بچہ لے کے آ گئی تھی, آپ یہ دو صورتوں میں اتنے واقعات سنیں گے کہ سٹوری ٹائم ہے, یقین کریں. اگر آپ کے بچے بچیاں گھروں میں, آج کوئی چھٹیاں ہیں مجھے نہیں پتا, ان کو بھی ساتھ کہیں کہ گھر سے سن لیں, ادھر لے آئیں کسی جگہ بھی, کیونکہ اتنی ایمان افروز سٹوریز ہیں. اور یاد رکھیے کہ زندہ کردار زیادہ بولتے ہیں. صحابہ کے یہ کردار ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں. ایک کسی نان مسلم کی بات سنا کے آپ کو شروع کرتی ہوں آیتوں کو, کہ اس نے کہا کہ ہر قوم کے پاس کوئی ایک ہیرو ہوتا ہے. ایسے ہی نا کچھ ہیروز ہی ہیں نا جن کے نام مشہور ہیں ہر کلچر میں. کہتے ہیں لیکن ان مسلمز کے پاس دے ہیو دا نرسری آف ہیروز. نرسری نہیں ہوتی پھولوں کی, وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو مٹی کو اٹھاؤ تو نیچے سے ایک ہیرو نکل آتا ہے. وجہ کیا تھی کہ وہ اس طرح خوبصورت لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تڑپ دے. یہ مشن سمجھ آ گیا تو ذہن میں ابھرنے والے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. تو آپ اس وقت دعوت کے راستے پہ, تنظیم, تربیت اور صبر, یہ چار کام کیجئے. پانچواں کام ہم سب مل کے اس کورس کے بعد کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور زندگی کے آخری دم تک کریں گے اللہ نے چاہا تو. یقین کیجئے, کل بہت ہی میں نے خوشی کی خبر سنی. میرے لیے خوشی کی خبریں کیا ہوتی ہیں, لوگوں کی خوشیاں عموماً کیا ہوتی ہیں؟ عموماً ہماری سب کی خوشیاں یہی ہیں نا دنیا کی, اور وہ تو ہیں ہی ہیں, ہم سب انسان ہیں. لیکن میں آپ کو گواہ بنا کے اللہ کو کہہ سکتی ہوں اس جگہ پہ بیٹھ کے کہ میری زندگی کی خوشی اور غم جو ہے نا وہ اس کتاب اور اس دعوت سے. تو کل یعنی مجھے جو اطلاع ملی کہ ہمارے ماشاء اللہ دو نئے کورس شروع ہو رہے ہیں, اور وہ ہوتے رہتے ہیں ارد گرد جہاں بھی, لیکن اس میں جو زیادہ مجھے خوشی اس بات پہ کہ دوسرا کورس جو ہے وہ نارویجین لینگویج میں, یعنی اب اس وقت ہماری ناروے میں دوسری نارویجین کلاس شروع ہو رہی ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, کیا ہوتا ہے, زمین پہ بیٹھتے ہیں, ٹاٹ پہ بیٹھتے ہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن میں کل اتنا خوشی سے روئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اب میرے بعد سے پودا لگا ہی رہے گا. جس ملک میں رہتے ہیں اس لینگویج میں آنا ہے. آپ یہ بچیاں, یہ آپ سب کے لیے, یہ دو صورتیں آپ کے لیے ہیں. جب تک آپ یہاں انگلش کی کوئی کلاس, کوئی کورس ینگ بچیوں کی نہیں شروع کریں گے, آپ ابھی اس مشن کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے. ابھی تو سیکھ رہے ہیں نا, سیکھتے جائیے, لیکن گول رکھیں, ہائی ایمز. اسی ہال میں انشاءاللہ ہم نے انگلش کے کورسز آفر کرنے ہیں, ہم نے اپنی یوتھ کو بلانا ہے. ہم اپنے اتنے قیمتی بچوں کو کیوں چھوڑیں؟ ہم نے کب تک جینا ہے؟ یہ اردو تو ایک کھیل کھلونا ہے, یہ تو چند سالوں کی کھیل ہے. اصل ہر جگہ میں اس کا پودا لگتا ہے. ہم نے اپنی نسلیں تیار کرنی ہے. انشاءاللہ یہ جو چھوٹا سا اپ کمنگ بچوں کا کورس ہے, अगर वही दर्द रहा, थीम रहा, आप खुद देखेंगे उन 4 क्लासों में बच्चे एक दर्द लेके जाएंगे, ये हमारा ईमान है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से बातें हुई हुई हैं, रस्मी तालीमी देने वाली बात नहीं। तो बहरहाल आइए बात करते हैं कि अब सूरत कैसे और क्या थी, अब आयतों को साथ पढ़ने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको लेके अपनी ज़िंदगी को एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय बड़े बड़े काम करने की तौफीक अता फरमाए।